نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفالف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنی اس دو صفات کو بہت سے مقامات پہ قرآن میں سے ایک ساتھ فرمایا ہے, عزیز اور حکیم, عزیز الحکیم. بہت ہی زبردست عزیز, بہت ہی زبردست ہے. اب کتنا زبردست ہے اللہ, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, حد ہی نہیں کوئی اس کی, اللہ کے زبردست ہونے کی مثال کچھ نہیں ملتی اس کی. اشارے فرمائے اللہ پاک نے مکمل طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت اور قدرت اور حیبت کو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ کس قدر زبردست ہے اللہ تعالیٰ, لیکن قرآن میں اس کو کچھ اشارے اس طرح اللہ نے فرمایا, فاطر السماوات والارض, یہ زمین آسمان کو پیدا کرنا. کبھی آپ جہاز سے پر جب گزریں تھوڑی کبھی لو فلائٹ ہو, دیکھیں آپ سمندر ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے سمندر کو دیکھتا. ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا نظر آتا ہے انسان کو, کہ کسی چیز اللہ کی کرشمے نظر آتے ہیں. اگر جہاز کسی پہاڑ سے گزر رہا ہو تو آدمی دیکھ کے دماغ دنگ رہ جاتا ہے, کتنے عظیم پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں کالے کالے اونچے تک دور تک, سوچ نہیں سکتا آدمی کیا بناوٹ ان کی, کیا حیثیت ہے, کیا وزن ہو گیا, کیا چیز ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی مثال ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی ہلکی, یہ ہمارا ذہن نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے, کس قدر زبردست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس عظیم ہونے کے ساتھ اللہ پاک نے عزیز الحکیم فرمایا, حکمت. تو جو اتنا زبردست ہے, عزیز ہے, تو اس کی حکمتیں کتنی بڑی ہوں گی, یہ سوچیں. تو حکمت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا, اپنی عظمت کا, اپنی شان کا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کی حکمت کتنی بڑی ہوگی, اس کو کہ انسان کیا سمجھ سکتا ہے, اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا تو اس کی حکمت کو کون پہنچ سکتا ہے. پہلے زبردست کر دیا تاکہ سمجھ جائیں ہم کہ حکمت انسان جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کس چیز میں. اور پوری جتنی کائنات ہے انسان سے لے کے جو کچھ بھی ہے سب مبنی حکمت میں ہے اللہ تعالیٰ کی. سارا کا سارا نظام جو اللہ تعالیٰ کا نا وہ حکمت پر مبنی ہے. ہماری سمجھ نہیں سمجھ سکتی کہ بھائی کیوں ہے, اور کوئی بھی چیز جو ہے اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہے, نہ کسی کی پیدائش اور نہ کسی کی موت, نہ کسی کا زہر ہونا اور نہ کسی کا پوشیدہ ہونا, سب کا سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. اس بات کو جو سمجھ جائے آدمی تو پھر وہ آدمی صحیح بن جاتا ہے. بے موت یہی ہے کہ ہر چیز جو اللہ کی حکمت پر ہے यानी जहाँ तक है, आज हवा तेज चल रही है, ये बिल्ला की हिकमत है। हवा कम होगी, इसमें बिल्ला तारा की हिकमत है, हम नहीं समझ सकते। एक पत्ता शाख को उभरा है, अल्लाह की हिकमत है, और बहुत बड़ी हिकमत होगी। ये नहीं कि अल्लाह बताए, अल्लाह ने पहले कह दिया कि मैं अजीम हूं, अजीज हूं, तो मेरी जो हिकमत होगी वो कितनी बड़ी होगी। लेकिन है वो क्या? अल्लाह की हिकमत है। एक पत्ता जमीन पे गिर गया, हम समझते हैं मामू जी पत्ता गिर गया, गुरस गए, तो उस पत्ते की गिरने में बहुत बड़ी हिकमत, क्या राज उसके पीछे हम नहीं समझ सकते। कुछ कुछ अल्लाह सुब्हानहु ताला ने कभी ये बता दिए, समझिए लोगों तक पहुंची बातें, वरना नहीं पहुंच सकता, समझ नहीं सकता। लगता बहुत मामूली चीज है कि दरख्त से पत्ता गिरा है, शाख से झड़ा है, सड़क पर गिरी, हवाई उसको झोंका लेके चले गई, लगता बहुत मामूली चीज, आम चीज है, लेकिन उसमें क्या हकमत है आदमी नहीं सोच सकता। बाज दबा जहर जाती अल्लाह पाक की, जैसे आप ये देखेंगे इस पर एक वाक्य मुझे याद आ रहा जहन, कि अक्सर बागों के अंदर हम देखते हैं आम जो डाली से गिर गया, परिंदा है किसी चोंच मारे देख ली, कोई कच्चा गिर जाता है, कोई पक्के गिर जाता है, कोई किसी हालत में गिर जाता है। फल वगैरह बागों में होते हैं ना, कभी जामुन हुआ, कोई इस किस्म के शहतूत हुए, आम हुए, तो इसी तरह एक दरख्त से सेब गिरा, किसी का बाग था और साथ ही पे नहर थी, और सेब गिर के जैसे दरख्तों से गिरते हैं, वो नहर में चला गया। और सर एक आम बात है, जाएगा गल जाएगा, सेब खत्म हो जाएगा, मैं और आप देखते कुछ बात नहीं थी। अब वो सेब जो है उसको तराया अल्लाह पाक ने, उस रो में तैरने लगा वो सेब, तैरते तैरते दरिया के अंदर, नहर थी या दरिया था, दूसरी किनारे चलने लगा सेब, उस तरफ दूसरी तरफ दूसरे किनारे पर एक शख्स था, कई दिनों से भूखा, बहुत भूखा, बहुत दरवेश आदमी था, नेक इंसान था, किसी सफर में था बेचारा, खाने को कुछ भी नहीं उसके पास, बहुत मुफसदी की हालत में था। तो वो जब दरिया किनारे आया, सेब जो था वो बहते 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 जहां वो इंसान पहुंचा, वो सेब भी पहुंच गया। वो भूखा था, बहुत जबरदस्त जंगल था, तो कुछ था ही कुछ नहीं, वो एक दम लपका आदमी भूख की शिद्दत की वजह से, और उसने फौरन जनाब हाथ बढ़ा के उसमें नहर में कोशिश करके उस सेब को उठा लिया, वो सेब खा लिया उसने। जब सेब खाया, बहुत ही नेक अल्लाह वाला इंसान था, बहुत ही नेक आदमी था, उसकी नेकी का अंदाज़ा इससे लगा है, सेब खा के डकार नहीं मारी उसने, बल्कि क्या था, उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी इस कदर अजीम थी, इतना नेक इंसान था कि खाने के बाद एकदम उसको ख्याल आया, ये तुमने क्या किया, ये तो भाई गलत बात हो गई, ये सेब होगा इसका कोई मालिक होगा, इसका तो कोई मालिक होगा, और मैंने बगैर पूछे बगैर इजाजत झाड़ा तो जान देता, तूने इसको कैसे खा लिया, और हराम अगर मेरे पेट में चला गया तो इस हराम से अगर मेरा खून बन गया तो मैं तो खत्म, मेरी तो पुश्तें खत्म, उसका तो हाल खराब हो गया, क्योंकि जब भूखा था भूख की शिद्दत में उसको यह एहसास नहीं हुआ कि मैं गुनाह कर रहा हूं, लेकिन जैसे पेट के अंदर जब माल गया उसके, तो एकदम उसका एहसास हो गया कि ये तो बहुत गलत काम कर गया, उसके रोशन हो गई ना चीज अंदर से, ये तूने ये क्या काम किया, बड़ा सख्त परेशान, उसने ये तो भाई बहुत जुलम हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं, समझ नहीं आया उसको। उसने एकदम ख्याल आया कि इसमें तो देर लगेगी अभी खून बनने में, सेब में एहतियात देखिए, अभी तो सेब जाएगा स्टोमिक में जाता है, सिस्टम में जाता है, और फिर आप पता है गुर्दों से होता हुआ साइंटिफिक तरीके से आप पूरा उसको सिस्टम कर लें, तकरीबन खून बनने में किसी गजा को 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, बल्कि 3 घंटे, तब जाके वो जो चीज आपने खाई है वो खून बनता है। तो उसने कहा कि इस 2 घंटे से पहले पेशते इसके ये खून बने और मेरी रगों में चला जाए फिर तो मेरे लिए कोई चांस नहीं होगा किसी किस्म का, इससे पहले मैं अपना इंतजाम करूं और मैं उस आदमी तक पहुंचूं जिसका ये बाग का सेब था और जिसका मैं तोड़ा मैंने खा लिया। वो तो जनाब उस नहर के अंदर गया हो दूसरे किनारे पे पहुंचा, पहुंचते जल्दी जल्दी उसने गए खून ना बन पाए है, मैं इसका हिसाब कर लूं किस तरीके से, कितना अजीम आदमी होगा मुझे आप बताएं, मिलते हैं कुछ जमाने में ऐसे आदमी ना किनारे पर सोचे आपसे। यह है तकवा, जिसको ऐसे तकवा कहा जाता है, इस तकवे के साथ इंसान को अल्लाह मिलता है, वो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हजारों वसूल से आते हैं आदमी को ऐसी बातों में, नहीं यार ये ऐसे कर लेते क्या फक या फलां कर लेंगे, नहीं कभी नहीं, जो है वो है, हो गया तो देखा जनाब बाग तक पहुंच गया, उस बाग का आदमी था, सलाम किया वालेकुम सलाम, देखा एक दरवेश फकीर आदमी बेचारा गरीब सा हुई, तो उसने पर इस मालिक कौन है इस बाग का, तो उसने क्या बात है, उसमें कोई फकीर है क्या चाहिए तुम्हें, खराज चाहिए पैसे चाहिए, कहते कुछ नहीं चाहिए मुझे मालिक बताएं कौन है, कहता मैं ही हूं, आप मालिक हैं, कहते हैं मैं मालिक, कहते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्या गलती की है, कहते जनाब एक आप ही का बाग इसके नीचे है नहर के नीचे, और किसी दरख्त से सेब टूट गया था, मुझे सख्त भूख लगी थी, मैंने उस सेब खा लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ, अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, और अगर ये बन गया खून तो मेरी सारी जिंदगी इबादत खत्म हो जाएगी, मैं तो कहीं का रहा ही नहीं, खून मेरे रगों से निकल नहीं सकेगा, और फिर वो मेरी औलादों में चला जाएगा, मैं तो जनरेशन मेरी खत्म हो जाएगी, आप कुछ रहम फरमाएं मुझ पर, गर्म फरमाएं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, माफ कर दूं। ये वाकया सुना रहा हूं पता नहीं किस बात पर सुना रहा हूं, किस बात पर, हिकमत अल्लाह ताला की, टॉपिक तो याद रखे ना, यानी बता रहा हूं कि अल्लाह सुबहाना ताला की हर चीज में कोई क्या होती है, ये हिकमत बता रहा हूं, हम तो कहते हैं ना ये पत्ता गिर गया कोई बात नहीं, हम कहते हैं ये जो हवा चली थी आज इधर चली इधर क्यों चली गई, इन छोटी बातों बता रहा हूं। वो आदमी जो था उसने देखा और देख के हैरान हो गया कि दुनिया में ऐसे आदमी भी होते हैं, मेरे तो कितने लोग खा जाते होंगे पता नहीं, कितने लोगों ने खा लिए होगा, कई माली खा गए होंगे, कोई हिसाब ही नहीं होगा इसका, तो ऐसे आदमी भी होते हैं दुनिया के अंदर, ये भी है। वो एकदम तो पहले दंग रह गया इंसान, और रहने के बाद फिर उसको होश आया, उसने कहा मेरा मकसद जो तो हल हो गया है, कहने की बात ये है ये तो आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है, आपने मेरे सेब रख का खा लिए तो आराम है, आप अल्लाह को जवाब क्या देंगे, उसके इसलिए तो मैं आया हूं, बड़ा मुश्किल है, मैं तो ऐसे माफ नहीं कर सकता, खुदा के लिए माफ करते हैं, मैं क्या करूं गलती हो गई मेरे से, कहते ठीक आपने बहुत बड़ी गलती की है तो मेरी कुछ शरायत है मैं आपको माफ कर दूंगा, मेरी क्या शर्त है आप, कि जो शर्त है जनाब बताए, मान कहते हर शर्त मानूंगा आपकी, खुदा के वास्ते उसे हिसाब से निकाल दें, मैं जहनुम की आग से बच जाऊं किस तरीके से, शर्त यह है कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है जी आप कहाँ होते हैं, शादी की एक चीज होती है, आदमी सोचता है कि भी शादी के लिए इंतखाब करना होता है आदमी ने किस किस्म की लड़की है, ठीक भी है खराब भी है खूबसूरत भी है बुरी भी है, शर्म भी जाच देती है, लेकिन फंस गया उसने माफी के लिए सब कुछ भूल गया, कहता जैसे भी वो सारी जिंदगी लिए चलती है और घंटे 2 घंटों की थोड़ी होती है बीवी, तो आदमी कितना मोहतात होता है सिलसिले में, लेकिन तो आप एहसास देखें उसके जुर्म का कि अल्लाह ताला से कितना खौफ था उस शख्स को, कहने लगा नहीं जी, कहता ठीक मैं तैयार हूं, कहते मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं ये भी सुन लो, करनी पड़ेगी शादी, कहते ही करूंगा। कहते अंधी है वो, अंधी है। सोचा उसने, कहते चलो अंधी कोई बात नहीं, कम से कम बात बात तो कर सकेगी, चल फिर सकेगी। कहते ठीक है मैं करूँ। उसने गूंगी है, गूंगी भी है, अंधी भी होगी गूंगी भी, बोल भी सकेगी, ये तो बड़ा सलाम है। कहते ठीक है मैं करूँ, चलो हाथों तो चलते होंगे। कहते वो तो पांवसी में होता जाए, चल भी नहीं सकती। अल्लाह चुप, बताओ जल्दी। कहते ठीक है मैं कर लूंगा। कहते हाथ भी नहीं चलते उसके। ओह अब बताएं, हमारे नजदीक कोई गुना है ही? हमारे क्या आप तनासिब निकाल लें, बड़े बड़े में नजदीक गुना होगा एक से। अगर मैं क्या बता रहा हूं, टॉपिक क्या है हमारा, एक सेब की हिकमत बता रहा हूं आपको गिरने की। क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि हम इस दुनिया के अंदर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, है ना। हमारे अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, मुझे आपको पैदा क्यों किया है, किस लिए किया है, कोई हिकमत जरूर होगी इसकी। कुछ इतनी बड़ी एक सेब नहीं गिर सकता, तो आप बैठ गए जमीन पे आके आलती पालती मार के इंसानी शक्ल में लग, तो इसमें कोई हिकमत नहीं होगी, जरूर अल्लाह का इसमें राज होगा। और अब तक तो हमने समझी अपनी हिकमत, कितनी कितनी उम्र के लोग बैठे होंगे माशाल्लाह, अब तक तुम्हें यही समझे बस जी फला साहब हमारे वालिद थे, बस वो हमारी वालदा थी, उनकी शादी हुई, हम पैदा हो गए जी, बस हम वहाँ इंडिया में पाकिस्तान में पैदा हो गए, हम ये आ गए, खाना वाना खा रहे हैं, हमारी उसने वहाँ शादी कर दी, अब हमारी दुकान चल रही है, कारोबार हो रहा है, हमारे चार पांच बच्चे पैदा हो गए। यही हिकमत थी अल्लाह ताला की, अगर यही हिकमत थी तो फिर अजीब चीज थी। और हिकमत अल्लाह ने कुछ पहले क्या कहा, अजीजुल हकीम। कोई चीज एक सेब इंसान को गिरा है, एक मुझे एकदम एहसास हुआ ना अपनी जिंदगी का, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम अपने आप को नहीं समझे, अंदाजा लगे, यानी हम अपने आप को अल्लाह की उस हिकमत से बाहर कर दिया कि हमारे कोई है, हम तो है ही। आप सोचें जरा, होगी हिकमत नहीं होगी। ये यहां क्या था पहले, आज सिर्फ 100 साल पहले आप आए, ये जो यहां बैठे कुछ था ही? नहीं। अल्लाह सुबहान तआला ने इसको मैदान बनाया, इसमें मिट्टी रखी, पता नहीं क्या हिकमत थी। तो थोड़ी बहुत हिकमत हमें समझ आती है कि यहां एक मस्जिद बनेगी, मस्जिद में लोग सजदा करेंगे, एक जमात आएगी मेरा जिक्र करेगी, ये कम हिकमत है। वहां जमात आएगी, वहां हफ्ते में एक दो जिक्र हुआ करेगा, और जब जिक्र हुआ करेगा तो आसमान से जमीन तक उन फरिश्तों को जो इंतजार हुआ कि हम जाके उन लोगों का दीदार करें जो हमारा अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनकी जमातें उतरेंगी जमीन पर। हिकमत है, हमें नहीं पता, हम बस आ गए जी फला मस्जिद ताश में गए, जिन्होंने आपने बताया कि जी एक मस्जिद ताश में गए, मुझे तो पता नहीं, बल्कि बहुत पहले की बात है, इमाम साहब आए हुए थे मस्जिद जिक्रिया के अंदर, तो मुझे मिले, बड़े मोहब्बत से मिले, ये जो आपके इमाम साहब ने कहा जो हफ्ते में होते, तो मैं समझा कोई अरब है ऐसे, तो पता चला कि भाई वो पाकिस्तान से भी, तो मैं तो आपको जानता हूँ, मैंने आपको नहीं देखा, मौको नहीं देखा, मैं आप कहाँ होते हैं, तो मैं तो मस्जिद ताशम, तो वो कितने मस्जिद बर्मिंगम से आप आए, मुझे ये पता मस्जिद आए, तो नहीं नहीं होते इधर काफी देर से बनी हुई है इधर, तो आप कभी नहीं था, मैं कहा नहीं आता, मुझे तो पता नहीं, तो कभी आए ना उधर, मैं कहा इंशाल्लाह देखिए कभी है। अब क्या पता था, अब अल्लाह की हिकमत देखे, समझ आई बात आप, तो अपनी जिंदगी को किसी भी बात को याद रखें, कभी मामूली ना समझे, किसी चीज को भी मामूली ना समझे, उस राज को पाने की कोशिश करें कि यह है क्या, उस राज को फायदा लेने की कोशिश करे आदमी, किसके मकसद क्या था, क्या होगा, बेकार नहीं है। आप चले घर, सही बता रहा हूं, जल्दी चले, आपने दुकान खोलनी है, कोई दुकानदार है वहां पर, ओह ओह चाबी जेब से भूल गया, ये आधे रास्ते में, अब जब वो चाबी भूल गए और आधे रास्ते से जा रहे हैं, पत्नी कितनी बड़ी हिकमत होगी, मैं बताता नहीं कौन, हिकमत ये थी कि आपने सड़क पार करनी थी, गाड़ी ने आना था, आपका एक्सीडेंट होता आपको मार देना था, लेकिन क्योंकि आपने सुबह की नमाज पढ़ी, इशराक की नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, आपकी मुसीबत जो टल गई खत्म हो गई, लेकिन आपको वहां तक तो गुजरनी था ना, अल्लाह ने आपकी उस चाबी को आपसे बुला दिया, हिकमत ये हुई इस चाबी को भूलने की कि आप उस एक्सीडेंट से बच गए। मैं अपना किस्सा सुनाता हूं, मेरे ताया सच्चा सच्चा बता रहा हूं। मेरे वाले बहुत पहले की बात है, पूरी फैमिली के साथ मेरे ताया के पूरी 6 बच्चे, जवान बच्चे, बच्चे बच्चे हैं। मेरे वाले साहब एक शादी में जा रहे हैं मुल्तान से कराची की तरफ, तो ऑफिसर थे वो इसके रेलवे के, तो उनकी पूरी वो बुक होती थी, क्या कहते हैं वो बोगी शोगी, बड़े कंफर्टेबल, बड़े आराम से जा रहे हैं बच्चे हैं, खाना वाना भी आता था वो ट्रेन के अंदर, वो जैसे ऑफिसरों को आता है। अब देखें एक स्टेशन पहले गाड़ी पता नहीं कैसे रुक गई, मेल थी, और वो स्टेशन बहुत मामूली स्टेशन, और उससे कुछ समझ में आप आधा घंटा या एक घंटे का सफर था, पौना घंटा, तो कराची आना था, चीन में पहुंच गए थे। वो गाड़ी रुकी तो अब मेरे वालिद और वो हमारे ताए थे, वो कहने लगे चलो अब गाड़ी रुक गई है तो ऐसे करते हैं कि कुछ चीज ले लेते हैं वहां से खाने के लिए, या कुछ ऐसा देखते हैं, या कुछ चाय वगैरह है कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा बीवी से, नहीं आप क्यों नीचे उतरते हैं, बैठे गाड़ी में कहां जाना, या आपको बताओ ये हिकमतें अल्लाह ताला की क्या होती। अब बच्चे वहीं बैठे, बीवी वहीं बैठी, तो वो कह रहे नहीं नहीं हम अभी 2 मिनट में आते हैं। एक बच्चा जिद करने लगा मैंने भी जाना है, तो वो बिल्कुल नीचे उतर गया, लेकिन उनका नहीं तू नहीं जाएगा नीचे, हम वापस आ रहे हैं 2 मिनट में, उसको धड़का के ऊपर फिर बिठा दिया। अब वो चले हैं कुछ लेने के लिए, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर चल पड़ी, और कोई वहां स्टेशन में ना कोई चाय होती थी ना कुछ, लेकिन अल्लाह ने जहन डाला वहीं उतर गया। अब गाड़ी चली तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो डब्बा नहीं मिल सका, तो जिस डब्बे में उनका हाथ पड़ा, फिर चलो अब थोड़े फासले पे तो है ना कराची उतर ही जाना है, तो बच्चे उसमें बैठे हम इसमें बैठ जाते हैं, वो पीछे वाले डब्बे में बैठ गए। 20 मिनट चली ये गाड़ी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। नतीजे क्या हुआ कि उनके तो सारे बच्चे खत्म हो गए, एक बच्चा नहीं बचा, वो दोनों मेरे ताया और मेरे वाले सब बच गए। हिकमत क्या थी कि अल्लाह ने उन दोनों को बचाना था, गाड़ी को खराब किया, हालांकि कोई मकसद खराब होने के लिए गाड़ी का, गाड़ी को खराब किया, गाड़ी खराब हुई, और उन बच्चों की पूरी फैमिली क्या, तो अल्लाह ने लिख दिया था कि इन्होंने जाना है जन्नत में पहुंचने नहीं, किसी की खत्म हो चुकी थी। अब कितनी हिकमतें मौजूद हैं इसमें, आप गौर करें अल्लाह ताला हर काम में। तो आप बताएं हम क्या है कि हम घर से चलते हैं, किसी चीज को सोचते नहीं है कि क्या हुआ क्यों हुआ, हर चीज को हम हादसाथ पे ले लेते हैं, अपने पे ले लेते हैं, मैं इसलिए बीमार हो गया, मुझे ठंड लग गई थी, भूल मैं इसलिए गया था, फलां हो गई थी, चाबी मैंने ये नहीं किया तो फलां हो गया था, लेकिन क्या थे कैसी राज होते हैं उसमें, क्या नहीं जानता। अब क्या हुआ, टाइम है इंशाल्लाह फिक्र नहीं, क्या हुआ वो जो थे कहता नहीं जी कहता ठीक है मैं शादी करूंगा, तैयारी हो गई मजाजी, कहते मेरी जान बचाए इस गुनाह से, और जल्दी करें, वो कहने लगे क्यों, वजह यह है कि मैं खून ना बन जाए, खून बनने से पहले पहले ही मेरी माफी आप कबूल करें, कितना बड़ा इंसान होगा मुझे बताएं आप, नामुमकिन चीज है ऐसी हिस्ट्री के अंदर, अल्लाह ताला की हिकमत देखे सेब से उस इंसान से क्या अल्लाह ने काम लिया, शादी हो गई। क्या वाक्य आप जानते हो, बहुत मशहूर वाक्य सुना रहा हूं आप, शादी हो गई और शादी के बाद वो अपने रुसदी में गए बीवी के पास, जाके जो अंदर गए तो देखा चांद जैसा चेहरा, हसीन जमील औरत, खूबसूरत, तो जो अंदर उनका सलाम अलैकुम, तो वालेकुम सलाम, जबान भी बिल्कुल सही, हाथ भी सही, पांव भी सही, चेहरा भी खूबसूरत, तो एकदम पीछे भाग गए। तो वो तो झूठ नहीं बोल सकता आदमी, तो अपनी शादी करने के आदमी तारीफ करता है, बुराई तो नहीं ना करता। उसने कहा मैं किसी और गलत जगह पर, आपने आपकी बेटी से मेरी शादी हुई है, आपने मुझे कहां भेज दिया, कहते हैं ये मेरी ही बेटी है, तो आपने तो बहुत कुछ कहा था, कहते हैं मैंने सच कहा था, तू तेरा जैसा इंसान जो है उसको ऐसी ही औरत चाहिए थी, जिस किस्म का तू इंसान है वो ऐसी औरत उसको चाहिए थी, जी वो कैसे, कहते इसलिए कि मेरी बेटी है, ये अंधी इसलिए है कि आज तक जिंदगी में किसी गैर महरम को नहीं देखा, बहरी इसलिए कि कोई भी गैर शरी बात खैर कानून कुरान के अलावा से कोई चीज भी कुरान इन कानून से नहीं सुना, मैं इसका बाप, जबान से कोई लघु बात आज तक जबान से नहीं निकली, इसके कदम किसी भी गैर शरी जगहों पर उठे नहीं, हाथ का मजाली क्या कि सिर्फ एक चीज जानती है कुरान को उठाना, इसके अलावा इसको पता ही नहीं कुरान हाथ हाथ में से कोई चीज उठाई जाती है। मैं इस बच्ची का सामने हूं, मैंने इसको देखा इस तरह और ये पैदाइशी ऐसी। तो फिर उनको आया, अब क्या देखें, हिकमत देखिए आपसे कि किस लड़की को, किस इंसान को, अब उसको तो पैदा किया था अल्लाह ने, उस इंसान को तो उसकी हिकमत ये रखी थी कि ये जो मैंने पैदा किया इसके साथ होना ऐसी चाहिए जो, लेकिन अभी हिकमत क्या थी इसमें, उन दोनों की मिलाप की क्या थी। अब जब ऐसी औरत हो, ऐसा मर्द हो, तो बच्चा क्या होगा। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह, हम कहते ना गौस पाक, ये हिकमत था, उस सेब की हिकमत से पैदा हुए। कितनी बड़ी हिकमत है, ना वो सेब गिरता, ना पानी में जाता, ना गौस आजम पैदा होते। क्या शख्सियत पैदा होगी मुझे बताएं, कायनात में ऐसे इंसान पैदा हो सकते हैं मुझे बताएं। जब पहली दफा तकरीर की अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ने, काम ही आने अल्लाह पाक ने, उनसे एक औलाद पैदा करनी थी, औलाद से काम कर लेता, मकसद दीन ही ऐसा। हकमत कहां अल्लाह की, दीन पर ही चलती है इंसान की, हर हिकमत दीन पर, आखिरत पर है हर हिकमत। लाखों इंसान मुसलमान हुए हैं, लाखों इंसान मुसलमान हुए हैं। यह है उनका रिकॉर्ड था कि पहली इन्होंने जो तकरीर की है बगदाद के अंदर, पहली तकरीर के बाद जो था पूरे बगदाद इराक में शोर मच गया कि अजीब आदमी आ गया तकरीर करने वाला। अब्दुल हक मुहद्दस दहलवी रहमतुल्लाह अपने किताब के तस्सीफ में लिखते हैं बारे कि जिस वक्त उनकी तकरीर होती थी 80-90 हजार आदमी होता था तकरीर में, मस्जिदें थोड़ी पड़ गई, मैदान थोड़े पड़ गए, बड़े से बड़े मैदान कम पड़ गए, यानी फिर लोग किस तरह उनकी तकरीर में आते थे, सवारियों के ऊपर आते थे, घोड़ों पर ऊंटों पर आते सुनते थे। 90,000 आदमी जो था उनकी तकरीरों को सुनने के लिए आता था। और फरमाते हैं अपनी किताब में लिखे, वो कहते हैं कि उनकी तकरीर जिस वक्त कुरान की वईद पर, वईद की आयत सुनाते थे, यानी जिसमें अल्लाह ताला के अजाब या तंबी आ रही है, तो जिस वक्त वो इसकी तशरीह करते थे तो कई जनाजे उड़ जाते थे मजमे से, इतना खौफ लोगों में तारी हो जाता था। किससे पैदा हुई है, अल्लाह की हिकमत क्या थी उस सेब में, कि हमने इस तरह पैदा करना था उसको, मबनी था, वरना अल्लाह तो कादिर है। वो कौन कह के आदम अलैहिस्सलाम को बना सकता है, ईसा अलैहिस्सलाम को बना सकता है, हव्वा को बना सकता है, तो क्या वो उनको नहीं पैदा कर सकता, क्या मुझे आपको पैदा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें कि हमारी हर जिंदगी के हर फेल के अंदर हिकमत है दोस्तों, हर जिंदगी फेल में हिकमत है, किसी चीज को मामूल। और वो हिकमत कहां खत्म होती है, यकीनन जाके वो हमारी आखिरत की तरफ जाती है। अल्लाह ताला याद हमें जहन्नुम से बचाना चाहते हैं उस हिकमत के तहत, और कहां लेना चाहते हैं, जन्नत में पहुंचाना चाहते हैं। जिस रास को समझ गया अल्लाह ताला की हिकमत की रास को, अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता जिंदगी के। एक बीमारी है किसी नहीं आती, मुझे बताया किस तरह बीमार बैठोगे सारे, मैं भी आप सब, कुछ ना कुछ तो किसी नजर लगा है, किसी की पेट में दर्द है, किसी की नब्ज तेज चल रही है, किसी का ब्लड हाई प्रेशर है, क्योंकि आज का जमाना तो सेहतमंद कम है बीमार ज्यादा है। तो ये है कोई चीज खालिस है नहीं, पहले जमाने में जो था बीमार मुश्किल से कहीं मिलता था, पूरे शहर के शहर गांव के अंदर कहता किसको बीमारी, खांसी भी नहीं होती थी लोगों को, बस कुछ हुआ तो मूली तोड़ी, शहद चाटा, गंदम खाई, नजले का इलाज कर रहे हैं मूली से और पेट का इलाज कर रहे हैं गाजरों से, और किसी का खाने पीने से इलाज हो रहा है माशाल्लाह। किसी को जनाब अगर जुकाम हो गया तो दूध लेके उसमें घी डाल के गर्म किया, वो दूध पी रहा है माशाल्लाह, जुकाम से ही हो रहा है। तो अल्लाह की रहमतें बरकतें थी, क्योंकि ना बेईमानी थी ना फ्रॉड था, मासूम लोग थे, सादा लोग थे, एक दूसरे पर एतवार करने वाले थे, सच्चे लोग थे, फ्रॉड नहीं था। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी हिकमत के साथ काम रखा था, लोगों में बीमारी नहीं थी। आज ये कि हर घर में जनाब जिसको देखे बोतल लिए फिर रहे, जब केमिस्ट के पास से गुजरता था थैला ऐसा पकड़ा था जैसे सेंसबरी से आ रहे फ्रूट पकड़ा था, मैं हैरान हो गया पहले दफा, कितना बड़ा थैला इतना महंगी, सेंसबरी से निकल रही, केमिस्ट ने शुरू कर दिया कि फ्रूट बेचना, पता चला ये उस चीज की बीमारी, ये सुबह खानी है गोली, ये शाम को खानी है, पेट दर्द की है, पता उसकी है, इसकी है उसकी, पूरे थैले लेके गुजरते बड़ा आराम से, प्लास्टिक थैले होते हैं बड़े बड़े, मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद ब्लैक नहीं होते जो जिससे हम सामान खरीदते हैं, ब्लैक बैग वो लेके जाना पड़ा करेगा दवाइयों को, जिंदगी जो चाहिए अल्लाह की सुने अल्लाह ताला की। मैंने बताया बीमार है आदमी उसमें भी क्या है, मुझे बोले सेहत में चलना है उसमें क्या है, और हम इस हुक्म से क्या लेना है, आफत लेनी है। हर पहलू में अल्लाह ने क्या रखा है, अब बीमारी है अल्लाह ने जाहिर करता है बीमार क्यों कर रहा हूं तुझे, क्यों बीमार किया, क्यों नजला किया, क्यों तुझे टीबी लगाई, क्यों तुझे पगल किया, क्यों तुझे डिप्रेशन हुआ, तू तुझे क्या हुआ, کیوں فلاں ہوا, ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کیوں, بس کیوں کے چکر میں. اس کیوں کو نکالنے کے لیے کوئی در نہیں چھوڑتے کہ جہاں جا کے ہم سجدے نہ کرتے ہوں. کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر سمجھ جائے کہ حکمت ہے بندہ وہیں ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے. ہے ہمارا کچھ مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا حکمت سے, سمجھ آ رہی بات؟ الحمدللہ شکر ہے میری بات سمجھ گئے آپ. تو کتنا آدمی مطمئن ہو جاتا ہے, مجھے کتنا مطمئن ہو گئے ہم, خود مطمئن, سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ہے نہیں اس میں کیا, لیکن اللہ کی حکمت کس طرح ہوتی ہے. بیمار ہو گیا, حدیث میں دیکھ اللہ نے کیسے علاج بتایا, بیمار ہو گیا آدمی, کوئی بیماری لگ گئی ہمیں تو لگ رہی چلو یہ بھی, اب ہمیں بیماری پہ ہمیں کیا کہیں, پریشانی, شکوے, شکایت, شور, غور نہیں, سنیں ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اب حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں کسی کو بیماری دیتا ہوں تو کس پر دیتا ہوں, حکمت پر, صحیح ہے نا. اب اس آدمی کیا حکمت ہے, کہتے ہیں جیسے ہی آدمی بیمار ہوا, جیسے بھی میں کھانس رہا ہوں الحمد للہ, بیماری ہے نا, کم سے کم بیماری تو ہے نا, بیماری وہ جو تکلیف دے آپ کو, کھانسنے کی بیماری, یہ کیا ہے, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, کیونکہ ابھی میں علاج بتا رہا ہوں خود اس سے علاج کروں گا, دیکھیں کیا علاج ہے, کیا حکمت ہے اللہ کی اس میں, میرے کیوں کھانسا ہوں, کیوں نزلہ ہوا, کیوں چھینک ماری. ہر انسان مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ میری یہ بات سننے کے بعد, اگر سمجھ گیا, بچہ بچہ سب ڈپریشن نکل جائیں گے لوگوں کے, سارے گولیاں بھاگ جائیں گی ساری. دیکھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی بندہ بیمار ہوا, کسی قسم کا بیمار ہوا, تو فوراً آسمان سے میں دو فرشتے اس کی طرف بھیجتا ہوں. کتنے فرشتے, یقین کر رہے ہیں اس بات پہ, کیوں, حدیث, اور کون فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی, اور کس کی طرف, کس ریفرنس سے, اللہ کے نبی. اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا, اب دیکھیں آپ دعا کس طرح کریں گے, اللہ بیماری رکھ تو آئے, اللہ کہتا ہے دو فرشتے بھیجتا ہوں فوراً, بس ایک کام ہم نے کرنا ہے. دو فرشتے آتے ہیں, اللہ کہتا ہے جا, اس بندے کو میں نے بیمار کی ہے, اس کو میں نے چھینک دی ہے, اس کے پیٹ میں درد کی ہے, اس کو فلاں کی ہے, دیکھی کہاں جات بھاگتا ہے, کدھر ہے, ڈاکٹر سدھا کی طرح بھاگتا ہے یا کسی اور کام کرتا ہے, سب سے پہلے ڈلہوں کرتا ہے کسی ہسپتال میں, یہ کرتا ہے کیا, بس تمہیں یہ رپورٹ دینی ہے مجھے, اس کا ایکشن مجھے بتانا ہے فرشتوں کا. اور فرشتے تو پھر ایسے آتے ہیں نا زمین پہ, جیسے سیکنڈ نہیں لگتا فرشتے آ گئے, میں گھر میں بیٹھا ہوں بیمار ہو گیا, اب میرا ایکشن انہوں دیکھنا ہے, اس بیماری سے اسٹارٹ ہوتی ہے پہنچ جائیں گے فرشتے کہ بندہ کرتا کیا ہے. بندہ ہوا کوئی ذاکر اللہ کا, ذکر کرنے والا ہوا, یہ سننے, اب فرق یہ ہے ذکر کا فائدہ, جو ہم بیٹھے نا آدمی یہاں پہ, اگر کرنے والا ذکر ہوا تو اس کا کام بن جاتا ہے, کیونکہ اس کی عادت بن جاتی ہے اللہ کی تعریف کرنا. ذاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے, اللہ کی تعریف کرنا, اس کی عادت بن جاتی ہے, ذکر کرتے کرتے آپ کسی چیز کو کہنا وہ تعریف بن جاتی ہے. ایک آدمی اگر گالیوں کی عادت پڑ جائے نا تو اس کو پتہ چلے گا میں کہاں وہ گالی نکالتا رہے. میں دکھا تو آپ مکہ میں ہو مدینے میں باہر ہوتا ہے, اس کے منہ سے نکلنی نکلنی گالی, یوں کرتا پھرتا. تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اللہ کی تعریف ہی کرتا رہتا ہے. تو جب وہ بیمار ہوا کچھ ہوا تو اس کے منہ سے اگر نکل گیا, اور ضرور نکلتا ہے کسی آدمی کے منہ سے یا عورت کے منہ سے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, تو کیا نکلتا ہے, الحمدللہ. بیمار ہو گیا تو پہلے فون نہیں کیا, پیٹ ہوتا الحمدللہ, کیوں الحمدللہ کہہ رہا ہے, اس کو کسی نے سمجھا دیا کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. آج میری بات سمجھائیں گے, کہ کس کو کوئی تکلیف نہ سمجھنا, اس کو بیماری نہ سمجھنا, اس کو ایکسیڈنٹ نہ سمجھنا, چابی بھول گیا تو اس کو خراب نہ سمجھنا, کوئی ایک تیرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ خراب نہ سمجھنا. اس وقت اگر تو کہہ گیا فرشتے اترے ہیں الحمدللہ, اللہ کیا بنا کام, اگر بیمار سے کہتے الحمدللہ تو فرشتے کال پکڑتے ہیں, جو اس نے پہلا ایکشن کیا فرسٹ ایکشن, اس کال کو پکڑتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں اللہ کی طرف, ہاں بھائی رپورٹ کسی لے, کیا کیا اس نے, سب سے پہلے فون کیا, چیخا پکارا, ہائے مر گئے یار, میں ہی رہ گیا تھا رہنے کے لیے, میں بیمار ہونا سے یار, میری تو دکان ہی پر بند ہو گئی یار, میرا سارا کاروبار رہ گیا, میں نے تو فلاں کر دیا, یہ ہو گیا. ہزاروں قصے ہوتے نہیں تھے, اس وقت شکایت ہوتی ہی نہیں ہوتی, گھبراہٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی, جس کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو پتا ہوگا اس کو, سر گھومتا ہے نا, الٹی سیدھے خیالات جاتے ہی نہیں جاتے, سمجھے نا, اس وقت اس کو نہ ذکر یاد آتا ہے نہ کچھ, بلکہ اس کو اپنا یہ سمجھاتا ہے میرا بس نقصان ہو رہا ہے, میرا تو کام ہی خراب ہو رہا ہے, میں نے تو یہ آج بیمار ہو گیا, پتہ میرا وہاں کیا ہونا تھا, آج کیا کانٹیکٹ, یہ ہوتا ہے نا. لیکن جو اللہ کا ذکر کرنے والا, جس کی زندگی بنی ہوتی ہے, اس نے کیا کہا ہے, الحمدللہ. سبحان اللہ. کیوں کہا کہ اللہ تیری حکمت ہے اس میں, میری بہتری ہے ہم جانتے ہیں اس میں. تو جی اس قول کو جو پکڑا, ایک کلمے کو, وہ لے کر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, ایک ہی کلمہ کہا. ہاں وہ بتاؤ مجھے کیا کلمہ کہا. اللہ کہتا فشنس, اللہ خبیر و بصیر ہے, لطف لینا چاہتا اللہ تعالیٰ اس انسان کا, کہ بتاؤ جلدی کیا کہا اس نے فشنس کا. فشنس جی اس نے کہا الحمدللہ, خوشخبری دے دو انسان کو, خوشخبری دے دو کہ انسان تو دونوں جگہ کامیاب ہو گیا, دونوں جگہ کامیاب ہو گیا. کیسے؟ کہ اگر تو مر گیا اس بیماری کے اندر, تیری قسمت میں موت ہوئی, تو پھر بھی کیا ہوگا, اللہ اکبر, ڈائریکٹ تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا, کوئی حساب کتاب. کہاں جائے گا؟ سیدھا ایک الحمدللہ کہنے پر اللہ کی حکمت پر. کتنے کتنے زندگی میں دن کے اندر ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, ایک ایک بات میں بلب ٹوٹ گیا, یار بلب ہمارے ٹوٹنا تھا, دیر ہو گیا, شوبھ بجا دی, جیسے ٹوٹے الحمدللہ. کیوں؟ کہ بلب ٹوٹنا تھا, کسی دکان سے خریدنا تھا, اس کو پیسے کی ضرورت تھی, اس کی بیٹی کی شادی ہونی تھی, میرا پون وہاں جانا تھا, اس کے جیب میں پڑنا تھا, یا اس نے کہیں عمرے میں جانا تھا, اس کو روپے کو اس نے عمرے میں شامل کرنا تھا, حکمتیں کھلتی چلی گئی. دیکھا بلب کا کیا ہے, ٹوٹنے کا مقصد کیا ہوا, کہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اس حساب اور کتاب اس کا ہونا تھا. تو اس نے الحمدللہ کہا, جب سمجھ گیا حکمت کیا, تو اس نے کیا کہا, الحمدللہ کہا. تو اللہ کہتا ہے اگر مر گیا وہ بھی مجھے پتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ میری حکمت ہے کہ میں تجھے موت تیرے سر پہ کھڑی تھی, میں تجھے بخشنا چاہتا تھا, تیری اس بیماری سے تیری موت تھی, میں تجھے بخشنا چاہتا تھا, اور تیری زبان سے کرا کے میں تجھے بخشا کے جنت میں بھیجنا چاہتا. پھر کہتا اگر اس کو صحت مل گئی تو پھر کہتا صحت کی خوشخبری تو اس کو کہ جو تیرا یہ گوشت تھا, بتاؤ کہ تیرے رب نے کل کرنے کے بعد پورے گوشت کو چینج کر دیا, اللہ ہو, ہر جراثیم کو ختم کر دیا, بیچ میں سے کینسروں کو اڑا دیا, سب کچھ ختم کر دیا ہم نے, تیرے گوشت کو چینج کر دیا, اور جو خون چل رہا تھا تیری رگوں کے اندر اس کو بھی پورا ٹرانسپورٹ کر دیا ہم نے, کلیئر کر دیا, کلیئر کر دیا. سبحان اللہ, گوشت ختم, خون چینج, انسان بالکل چینج ہو گیا اس کے بعد, اور شفا تو ہے الحمدللہ, شفا تو ہے, شفا جو ہو گیا, گوشت چینج, خون چینج, اور پھر کیا, الحمدللہ سارے گناہوں کو تیرے ختم کر, اٹھو نئی زندگی شروع کر دے. تو میرے بھائیو یہ حکمتیں ہیں, چھوٹی سی بات ذہن میں آئی تھی, الحمدللہ بات بڑی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر الحمدللہ کہنے کی توفیق دے, کسی چیز کو ہم نہ خراب کہیں اور نہ برا کہیں, اور نہ اپنے آپ کو کوسنا شروع ہو جائیں اور نہ اپنے حالات پہ کھانا شروع کر دیں, فوراً سب سے پہلے اپنے رب کی طرف جائیں, اللہ تعالیٰ تو قادر ہے, اس صفت کو یاد رکھیں, عزیز الحکیم, حکمت, اور کتنی بڑی حکمت کہ جتنا بڑا وہ عزیز ہے, بس فائدہ ہی فائدہ ہے ہمارے, اس میں نقصان نہیں. ہم تیری تصویر کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم پہ عمل کی توفیق اس پہ